আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم আজ ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مجذوب اور مجذوبیت آپ نے بزرگان دین کی محافل میں یہ نام سنا ہوگا مجذوب فلاں مجذوب فلاں علاقے میں رہتا تھا فلاں مجذوب نے یہ کہا تو یہ ہو گیا تو یہ لفظ مجذوب جو ہے یہ کیا ہے آج اس پر گفتگو کریں گے اور تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلی چیز کہ مجذوب کسے کہتے ہیں دوسری چیز مجذوب کیسے بنتا ہے اور تیسری چیز کیا مجذوب سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے بڑی توجہ سے آپ سنیں بزرگان دین اولیاء کاملین میں مختلف طبقات ہیں عہدے ہیں مراتب ہیں مناصب ہیں صاحب وقت ہے نقبہ ہیں نجبہ ہیں ابدال ہیں اوتاد ہیں اقطاب ہیں اغواس ہیں یہ سارے درجے مرتبے یہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کیونکہ اہل طریقت اہل محبت ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ مجذوب کیا ہے مجذوب جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے اس کے معنی ہے کھینچا ہوا لے جایا ہوا بعد میں لکھا کہ اس کے معنی کھینچنے اور لے جانے کے ہیں اس کا فاعل جاذب ہے جس کے معنی کھینچنے والا اور اس کا مصدر جذب ہے اب یہ دیکھنا کہ مجذوب کون ہے بزرگان دین اولیاء کاملین نے لکھا کہ جب انسان راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے یعنی کسی کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور اس کے بعد اس کی روحانی تربیت شروع ہوئی اب اس کے شیخ نے اس کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے بتائی کوئی اسم پاک مثلا اللہ الصمد ہے یا حیو یا قیوم ہے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک بتایا اور اس کو اس اسم پاک کا چلہ کرایا یعنی 40 دن ایک جگہ بیٹھ کر اس نے ایک خاص تعداد میں وہ اسم مبارک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک اس میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں مختلف مقامات ہوتے ہیں جن سے وہ آدمی گزرتا ہے اور گزرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کہیں جا رہا ہے یعنی بیٹھا ایک ہی جگہ ہوتا ہے روحانی سفر وہ کرتا ہے روحانی کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور جب وہ تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے اگر وہ اس مقام سے گزر جائے تو سالک اور اسی تجلیات میں گم ہو جائے تو مجذوب یہ اس کی ایک مختصر تعریف یعنی اسی جلوے میں گم ہو گیا اب وہ اس سے نظر ہٹانا نہیں چاہتا دنیا اور مافیا سے بے خبر بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف موجود ہے اس کا مفہوم یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ تمہیں پرا گندا حال نظر آئیں گے ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے عجیب حال میں ہوں گے اور ایسے حال میں کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر آئیں تو تم انہیں دھکے دے کر نکال دو ایسے ہوتے ہیں نا لوگ کسی کے گھر میں گئے ان کا ہٹاؤ اس کے لیے تو فقیر ہے اس کو دھکے دے کے نکال तो सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि वो इस हाल में होंगे कि लोग उन्हें धक्के देकर निकाल दें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के हाँ उनका मकाम ये होगा कि अगर वो किसी चीज पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा कर दे। ये उनका मकाम। दुनिया वाले नहीं समझते, कहते ये पागल है, दीवाना है, इसको न खाने की होश, न पीने की। यानी मजदूर की कैफियत ये होती है कि सख्त सर्दी में भी बगैर लिबास के, जिसमें लोग कोट, ओवरकोट और न जाने क्या क्या पहने फिर रहे जिस्म को बचाने के लिए, उस पर कोई असर नहीं। और सख्त गर्मी में कंबल ओढ़े फिर रहा, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ उसके अहवाल जो जाहिरी तौर पर लोगों के अहवाल हैं या सालेकीन के अहवाल हैं, मजजूब का हाल इन सब से मुख्तलिफ है। तो वो उसको कहते हैं मजजूब, जल्द की कैफियत में रहता है हर वक्त। तो अब ये आपने समझ लिया कि जब वो उस मकाम से गुजरता है ना और उसी में खो जाए तो मजजूब है, और उससे गुजर जाए तो फिर वो सालिक। अब जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं वो सालिक, हजरत गौसे आजम, हजरत गरीब नवाज, हजरत कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, सुल्तान निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, मखदूम समनानी, मुजद्दिद अल्फिसानी, कुतुब रब्बानी, अशरफुल मसाई, ये सब सालिकीन इस मकाम से गुजर गए, और जो उसी में खो गया वही मजजूब हो। अब उसके पास बैठना ये बड़ा खतरनाक है, और खतरनाक इस लिहाज से है कि मजजूब की जो जबान है वो तलवार की काट है, जो जबान से निकल गया वही हो गया। कभी वो अच्छी कैफियत में है, आप जाके बैठ गए, उसने कहा जा बेटा तेरा बेड़ा पार हो गया, हो गया, जबान से निकल गया, हो गया। और अगर वो कभी जलाल में है किसी और कैफियत में और उसने कहा जा तेरा बेड़ा गरक, वाकई हो जाए। इसीलिए मना किया गया कि मजजूबों के पास ना बैठो, एहतियात करो बैठने से, जो जबान से निकलेगा उसी वक्त हो जाए। हम वक्त उसका राबता जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। इसीलिए आप देखते हैं कि बाज मजजूब जो है ना आंखें बंद रखते, खोलते ही अक्सर जो मजाजीब के जिक्र मिलते हैं आंखें बंद बैठे, कोई सवाल किया आंखें बंद करके जवाब दे दिया, खोलते ही नहीं। क्यों? आंखें बंद करके जो जलवा उन्हें नजर आता है वो आंखें खोल के नजर नहीं आती। समझ में आई बात? हम आंखें खोल के देखते हैं ना, हम आंखें बंद कर लें दुनिया अंधेर हो गई, आप आंखें बंद कर लें मैं नजर नहीं आऊंगा, मैंने आंखें बंद कर ली आप नजर नहीं आ रहे, और वो आंखें बंद करें पूरी कायनात को देखें। इसीलिए किसी ने लिखा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार के लिए आंखें खोली जाएंगी या बंद की जाएंगी? हम खोल के देखेंगे ना, वो आंखें बंद करके, हम आंखें बंद कर लें दुनिया अंधेर हो जाए, और मजजूब आंखें बंद कर ले, अल्लाह का वली आंखें बंद कर ले, पूरी कायनात रोशन हो जाए। क्यों? वजह यह है कि दिल की आंख खुली हुई, दिल की आंख बातनी आंख जो है ना वो खुली हुई, और इस जाहिरी आंख से आप जहां तक देख सकते हैं इस बातनी आंख से उससे कहीं ज्यादा देख सकते हैं। गौसे आजम ने फरमाया था नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खर जलत इन अला हुक्म तिसाल, मैं पूरी कायनात को अल्लाह के तमाम शहरों को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना। तो ये तो गौसे आजम की निगाह थी। तो जब गौसे आजम की निगाह ये है तो रसूल आजम की निगाह क्या हो? तो कहने का मकसद ये है कि इनका बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा है, इनकी अजमत और शान से इनकार नहीं किया जा सकता, बारगाहे रब्बुल इज्जत में इनकी मकबूलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक अलग ही जमात है, इसको समझना बड़ा मुश्किल। कोई झड़क देता है, कोई कुछ कर देता है, अपनी कैफियत में चले जा रहे हैं। जिस तरह के एक दफा हमने एक वाकया बताया था, शायद आपको याद हो, एक मजजूब फटे पुराने कपड़े, दाढ़ी पर, बालों पर गर्दो गुबार, मैले कुचैले कपड़े वो भी फटे हुए, जूता पहना वो भी फटा हुआ, चला जा रहा। बारिश हुई थी, पानी खड़ा था जगह जगह। अच्छा कोई बाहोश आदमी हो तो वो तो संभल के चलता है ना, पानी से बच के जाऊं, मैं इधर हो जाऊं उधर हो जाऊं, कोई ईंट रख के उसके ऊपर से गुजर जाऊं, मजदूर तो अपनी कैफियत चला जा रहा है। तो उसका जूता जो फटा था उससे छींटे उड़ रहे थे पीछे से, जैसे आगे कदम बढ़ाते थे पीछे से छींटे उड़ते थे, उसको परवाह ही नहीं, कपड़े उसके पहले ही खराब, किसी के ऊपर छींट जा रही है, उसके ऊपर पानी आ रहा है, कोई उसको परवाह नहीं, चला जा रहा अपनी धुन। एक गली से जब वो गुजरा तो एक लड़की अपने दोस्त के साथ या जो भी आप कहें नीचे बैठी थी, जो जीना था ना उसकी बिल्कुल शुरू की सीढ़ी पे वो बैठी, जैसे गली में दोनों बातें कर रहे हैं। अब ये गुजरे मजदूर साहब, इनको पता नहीं छींटे उड़ रही हैं इधर से, वो एक छींट उड़ी उस लड़की के मुंह पे चली गई, कीचड़ जो थी उसके मुंह पर गई। तो जो बैठा था उसका दोस्त, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने आकर उस मजदूर के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा, देख नहीं रहा तू, छींटे उड़ रही हैं, चला जा रहा है, तुझे पता नहीं, और फौर बका जो भी उसको कहना था, इतनी जोर से मारा मजदूर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जबान से कुछ नहीं कहा, उसने आसमान की तरफ देखा और फिर नीचे मुकर के आगे बढ़ गया। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चला तो उसने कहा लड़के ने कि मैं अभी रुमाल लाकर तुम्हारा चेहरा साफ करता हूं, जो कीचड़ जो उसके मुंह पर गई थी लड़की के। तेजी में भागता हुआ जीने पर चढ़ा, जब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा पैर फिसला और लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, और जब लोग उठाने के लिए गए उसी में मर गए, खत्म हो। उसी वक्त एक सेकंड में लोग हैरान, ये क्या हुआ, सब देख रहे हैं, उसके थप्पड़ मारने को भी लोगों ने देखा, मजदूर के आसमान पर देखने को भी लोगों ने देखा, मजदूर उसी तरह चला गया और ये तेजी में ऊपर गया, वहां से पैर फिसला गिरा मर गया, लोगों ने देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चलता हुआ अभी गली के कोने तक पहुंचा था तो कुछ लोग दौड़े हुए गए, कहा बाबा खुश हो जाओ, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो मर गया, उसने तुम्हें मारा था ना मर गया। उसने आसमान की तरफ फिर नजर उठाई और कहा मेरा तो कोई मसला नहीं है, ये तो दो महबूबों की लड़ाई है, मेरा इसमें क्या है, मैं गुजर रहा था, मेरे जूता जो फटा हुआ था उससे छींट उड़ के उसके महबूबा के मुंह पर गई, उसके महबूब को गुस्सा आ गया, उसने आकर मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरा महबूब ऊपर से देख रहा था उसने उसे जान से मार, कहा ये तो दो महबूबों की लड़ाई है मुझे इसमें क्या, ये कहता हुआ फिर आगे बढ़ गया। ये है अल्लाह वालों की शान, उनको दुनिया से कोई गरज नहीं, कोई कुछ हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चले जा रहे। इनके अहवाल ही मुख्तलिफ हैं, यानी बुजुर्गान दीन में जो तबकात हैं उनमें मजदूबों के अहवाल सबसे मुख्तलिफ। दिल्ली में एक मजदूब थे हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह, बगैर लिबास के रहते थे, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन लोग जानते थे इनका मकाम बड़ा बुलंद, जो जबान से निकल गया हो गया। हम वक्त जज्ब की कैफियत में जामा मस्जिद देहली आज भी मौजूद है, उसका जो मेन दरवाजा है और उसकी सीढ़ियां हैं उसी सीढ़ियों के करीब उनकी एक छोटी सी झोपड़ी या कुटिया जो भी आप कहें उसमें रहते, अब वहीं बैठे रहते, राख रखी हुई अपने ऊपर डाल रहे हैं राख, बैठे लोग जाते थे मिलते थे चले जाते। शहनशाह औरंगजेब आलमगीर अपने जमाने का बड़ा अजीम हुक्मरान गुजरा है हिंदुस्तान का, और उसने जब सल्तनत हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो जाहिर है उसके कई भाई थे, अपने भाइयों को भी कत्ल कराया, कुछ भतीजों को भी, जैसा होता है बादशाहों का इख्तदार बचाने के लिए वो करते हैं, उसने भी किया। शाही किला जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने है, मैं खुद वहां गया, मैंने देखा है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं, जो शाही किला, शाही किले में रहता था बादशाह, और बिल्कुल सामने जामा मस्जिद दिल्ली, दोनों बिल्कुल आमने सामने, बीच में एक बड़ी सी सड़क है, मतलब मैदान है फिर सड़क है फिर किला। तो बादशाह वहां से निकलता था अपनी वो बग्गी में, शाही बग्गी, उसमें बैठकर मस्जिद तक आता था, फिर वहां नमाज पढ़ता था फिर चला जाता था। सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं बरेना, आलमगीर आया शहनशाह औरंगजेब आलमगीर, और इनके बराबर ही कंबल पड़ा था, कभी कंबल ओढ़ लेते थे, कभी उतार के फेंक देते। ये आया, इसने देखा, जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो देखा कि साइड में कोने में बैठे। उसने कहा, सरमत क्या ये तुमने लगा रखा, बगैर लिबास के तुम बैठे हो, तुमसे ये नहीं होता कि कंबल उठा के अपने ऊपर डाल लो, कम से कम सतह ढाप लो, इतना हिस्सा ढाप लो। इन्होंने यूं देखा, काट तू डाल दे। अच्छा, अब ये गया, इसने जैसे ही कंबल हटाया तो कंबल के नीचे इसके भाइयों और भतीजों की खोपड़ियां रखी, जो गर्दनें कटवाई थी ना इसने, वो रखी। खून यूं उठाया, एकदम ठिठक गया, डर गया, वहीं डाल दिया। हकीकत में नहीं थी, हकीकत में नहीं थी, रूहानी तौर पर उसे दिखा दिया कि तू जो कर आया ना, तो ये सारी चीजें। अब जब उसने जैसे ही वो खोपड़ियां देखी, जिन जिन को उसने कत्ल कराया था, देखा वहीं कंबल छोड़ दिया, तो आपने फरमाया, तेरे ऐप ढापू या अपना सतर ढापू। खामोश होकर सीधा चला गया मस्जिद में नमाज पढ़ने। मजदूबों की कैफियत। खैर, उनका वाकया तो काफी तवील है, उनकी शहादत का वाकया बस इतना आपके सामने बयान कर दूं, वक्त मुख्तसर है, कि वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा ने फतवा लगा दिया, ये पूरा कलमा नहीं पढ़ता, ये काफिर है, ये फना है। कुफर के फतवे तो आजकल फौरन ही लग जाते, बल्कि उस जमाने में भी लगते थे। तो जब उनको कत्ल का हुक्म हुआ, एक जम्मे गफीर जमा हो गया, लोगों की हुजूम हो गया, जल्लाद आया और जैसे ही तलवार मारी, उसी वक्त उन्होंने पूरा कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। और जब लोग पूछते थे कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ते हो, कहा अभी मैं इसी मकाम तक पहुंचा हूं, आगे मैं पहुंचा ही नहीं। बुजुर्गों की अपनी बात। तो पूरा कलमा पढ़ा, शहीद हो गए, और शहीद हुए गर्दन इधर गिरी और गर्दन उठाकर मस्जिद में जाने लगे। अब बताइए, गर्दन सर से अलग है और खुद अपने हाथ से उठाकर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे। तो उनके पीरो मुर्शिद, उनको उनका मजार भी वहीं पर है, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास। हजरत सरमद शहीद और हजरत हरे भरे साहब, उनका नाम कुछ और था, हरे भरे साहब के नाम से मशहूर। तो उनका मजार सब्ज है, इनका मजार सुर्ख है, क्योंकि ये शहीद थे, सुर्ख रंग हुआ हुआ। ये हमने खुद वहां दोनों मजारात की ज्यारत की। तो उन्होंने कहा, सरमद कहाँ जा रहे हो? कहा, बारगाह रिसालत में अपना मुकदमा लेकर। उन्होंने कहा, बस ठहर जाओ, हुक्म रब्बी यही है। बस वहीं गिर गए और उसके बाद लोगों ने वहीं उनको दफन कर। तो ये मजजूबों की दुनिया ही अलग है, ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से इनका एक वो राबता है। और बुजुर्गान दीन ने इनकी हालात, इनके वाकयात बयान किए हैं। हज़रत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखियार में मजजूबों पर एक बाकायदा नोट लिखा, एक बाब बांधा। इसी तरह हजरत मियां अब्दुस्समद फखरी निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते, मजजूब वो है जिस पर जज्बे इलाही ऐसा तारी हो कि एक आन में उसे वासिले बहक कर दे और तमाम मकामात उरूज बिला कस्ब मुजाहिदा के उसको तय हो जाए। इसी तरह दीगर तारीफात जो है मुख्तलिफ लोगों ने लिखी। उनकी रूहानियत, उनके मकाम, उनकी अजमत, उनकी रिफत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीयत के अहकामात उन पर लागू नहीं होते, उसके मुकल्लफ ही नहीं। हमेशा जज्बी कैफियत में है, और जो आदमी जज्बी कैफियत में, जिसको अपना होश ही ना हो, वो नमाज, रोजा, हज, जकात वो कहां से करे, वो अपनी कैफियत में नहीं। कभी कभी कैफियत में आते हैं और फिर दोबारा उसी चीज में वो मशगूल हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, महब हो जाते हैं। हमारे मखदूम समनानी, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जमाने में भी, हर जमाने में मजजूब होते थे। तो एक मजजूब थे, किसी मकाम पर रहते थे, लताइफ अशरफी में ये वाकया मौजूद है। मखदूम साहब का एक मुरीद था, देहाती, अनपढ़। अध्याती लोग तो आपको पता है सीधे साधे होते हैं, बस एक लकीर के फकीर जो बात बता दी बस उसी पर ही। तो मखदूम साहब ने एक मर्तबा फरमाया कि बेनमाजी के साथ खाना मत खाना, जो बेनमाजी हो उसके साथ खाना नहीं खाना। उसने याद कर ली ये बात, बस ये हजरत ने फरमाया, बेनमाजी के साथ खाना नहीं खाना। एक दिन आप اپنی خانقاہ سے نکلے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، کہا چلو فلاں مجذوب ہے ان سے ملنے چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے کھانا کھا رہے مجذوب، ہو سکتا ہے اس وقت کیفیت دور ہو گئی، ورنہ مجذوب کو نہ کھانے کا ہو، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا، کوئی نہیں، وہ اپنی کیفیت میں مست ہے۔ مجذوب نے نظر اٹھا کر دیکھا، کہا آؤ آؤ سید ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آپ بیٹھ گئے، جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کھڑا رہا، آپ نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، کہنے کا مجھ سے تو کہتے ہیں بے نمازی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ، خود بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، مجھ سے تو کہتے کھانا نہیں کھاؤ اور خود کھانا کھا رہے۔ اچھا اس کا اشارہ تھا مجذوب کی طرف، ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کیفیت میں ہی نہیں تھے اپنے، اور جب کیفیت میں ہوتے تھے تب پڑھتے تھے، لیکن جب بالکل ایک مدہوشی کی کیفیت ہو، ایک جذب کی کیفیت ہو، آدمی تو اس عالم سے بالکل بے نیاز ہے۔ مجذوب سمجھ گیا اور ان کو غصہ آیا، انہوں نے اپنے پیچھے سے تکیہ اٹھایا اور کہا میں اس کو ماروں گا۔ مخدوم صاحب سمجھ گئے، آپ فوراً اس کے اور مجذوب کے درمیان آ کے اس کو پیچھے کر لیا، کہا نہیں یہ میرا مرید ہے، نہیں میں اس کو آج ماروں گا، اس نے یہ کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے، معاف کر دیں گے، میرا مرید ہے۔ لیکن اب ان کو غصہ آ کے کہیں کسی نہ کسی کے میں یہ تکیہ ماروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ مینار ہے نا، اس پہ مار دیں۔ اب آپ دیکھیں مینار کتنا مضبوط ہوتا ہے اور تکیے کی کیا حیثیت ہے، آپ ہزار تکیے بھی مار دیں کچھ نہیں، لیکن مجذوب کی طاقت دیکھو۔ جب آپ نے فرمایا چلیں آپ اس پہ مار دیں، اس لیے فرمایا کہ تاکہ ان کا غصہ اتر جائے، مجذوب نے اٹھا کے تکیہ مارا، مینار پاش پاش ہو کے گر، تم تباہ ہو گئے، بالکل رضا رضا۔ یہ ہے مجذوب کی طاقت۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، جو اللہ کے ولی ہوں، جو ان کی کیفیات سمجھ سکتے ہوں، وہی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ سلام کر کے گزر جائے جائے، اور کہیں پتا ہو کہ کوئی مجذوب ہے دور دور سے، آپ وہ کریں اور اس کے بعد گزر جائیں۔ نہ جانے کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، بہت سارے مجذوب گزرے ہیں، کبھی وہ اچھی کیفیت میں ہیں، لوگ بیٹھے ان کو فائدہ بھی ہو گیا، کسی سے کچھ کہہ دیا اس کا کام ہو گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں، اگر وہ جلال کے عالم میں ہے اور اس کی زبان سے کچھ نکل گیا وہی ہو گیا، وہ اتنا سیف زبان ہوتا ہے، تلوار کی کاٹ جیسے ہوتی، جو نکلا وہی ہو گیا۔ تو اس لیے یہ مجذوبوں کے احوال ہیں۔ تو ان کی مختلف کیفیات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اور بارگاہ رسالت اور بارگاہ رب العزت میں ان کی جو مقبولیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی دیوانہ ہے، یہ تو ایسی پاگل ہے، یہ تو دنیا والے کیا سمجھیں، وہ تو اگر کسی کو دیکھیں نا پھٹے پرانے لباس، کہنے یہ پاگل ہے، کسی کو دیکھیں بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے۔ مختلف چیزیں نا، سلطان المشائخ، سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان سے پوچھا گیا محبوب بنو گے یا محب، انہوں نے کہا میں کل جواب دوں، گئے اپنی والدہ کے پاس، مجھ سے سوال ہوا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب، انہوں نے کہا بیٹا یہ سوچ سمجھ کے جواب دینا، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ دیکھا کہ ایک مجذوب تھے، فقیر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہا مجھ سے سوال ہوا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب، انہوں نے کہا کل آنا، کل جواب دیں گے، چلے گئے۔ اب رات بےچینی میں گزاری، صبح ہوئی، وہاں پہنچے، دیکھا مجذوب صاحب غائب، لوگوں سے پوچھا ایک بزرگ یہاں بیٹھے تھے کہاں گئے، کہا بزرگ، ارے وہ تو ایسے ہی پاگل دیوانہ تھا، تم اس کو بزرگ کہہ رہے، کہ نہیں وہ کہاں ہے، کہا وہ تو مر گیا، ارے کب، کہا کل ہی تو مرا شام کو، پھر کیا ہوا، کہاں تدفین ہوئی، کہا تدفین کیا، وہ تو ایسے ہی آدمی تھا، اٹھا کے پھینک دیا اس کو، اس کی لاش ہم نے پھینک دی کوڑے میں، کوڑے میں پھینک دی۔ حیران ہوئے، اتنے بڑے بزرگ تھے، مجذوب تھے، اور ان لوگوں نے دفن نہیں کیا، لاش کوڑے میں پھینک دی۔ کہا کہاں پھینکی، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں جانا، وہاں لاش پڑی ہو۔ چلے گئے، دیکھا تو لاش پڑی ہے۔ وہاں جا کر اس کی حضرت، ہم نے تو آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کل آنا، اور ہم تو آئے، ہم یہاں پہنچے، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ تو لاش سے آواز آئی، یہی تو جواب ہے، تم نے پوچھا تھا نا کہ تم سے پوچھا گیا محبوب بنو گے یا محب، دیکھو ہم محب بنے تھے، یہ حال ہوا، मुहिब बने थे ये हाल हुआ, न गोर न कफन कुछ में ऐसा नहीं हुआ। तुम महबूब बन जाओ, बड़े नाज उठाए जाएंगे। महबूब बन जाओ, बड़े नाज उठाए जाएंगे। आपने फरमा दिया ठीक है मैं महबूब बनूंगा, आज तक महबूब इलाही। तो ये बुजुर्गान दीन के अपने मकामात हैं, अपने मरातिब हैं, अपने मनासिब हैं, ये एक दुनिया इनकी अलग है। तो मजजूब पर गुफ्तगू चल रही थी, तो मुख्तलिफ तारीफात जो हैं बुजुर्गान दीन ने, औलिया कामिलीन ने इन मजजूबों की बयान की हैं। और बाद हजरात ने ये लिखा कि मजजूब की एक पहचान ये है कि अगर उसके सामने दुरूद पाक पढ़ा जाए तो वो होश में आ जाए। जाहिर महबूब का नाम लिया जाएगा, होश आ जाए। इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन बहरहाल उनकी सोहबत से बचना बेहतर है। बचना इस सेंस में नहीं है कि खुदा ना करे कोई वो ऐसे वो है, लेकिन इसलिए कि आप उनकी कैफियत को नहीं समझ सकते। अगर आप उनकी कैफियत को समझे, ये एक अलग अल्लाह तबारक वताला ने उनको मकाम और उनको मर्तबा अता फरमाया है। मेरे वालिद गिरामी अशरफ अल-मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु बजरिया ट्रेन लाहौर तशरीफ ले जा रहे थे, तो फरमाते हैं कि वो एक सीट पर बैठे थे, अचानक सामने एक साहब आए और सामने आकर बैठ गए, यानी थोड़े फासले पर दूर। पूरा डिब्बा था जैसे पूरा कंपार्टमेंट होता है रेल का, तो ये इस तरह बैठे हैं और वहां से काफी दूर सामने वो आके बैठे, और बैठते ही उन्होंने शुरू कर दिया इल्लल्ला 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 शुरू कर दिया। पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, फिर आवाज बुलंद होती रही होती रही होती रही, इतनी बुलंद हुई कि रेल की आवाज कम लग रही थी, उनकी आवाज ज्यादा लग रही थी। रेल चलते में आवाज होती है ना, खटखट खटखट जो आवाज आती है। तो वालिद गिरामी फरमाते हैं अच्छा उस डब्बे में हर किस्म के लोग थे, भाई नेक भी थे, बद भी थे, दुनियादार भी थे। और उस जमाने में रेडियो का बड़ा वो था, तो कोई रेडियो पे गाने लगाकर सुन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अपनी अपनी कैफियत में लोग बैठे। लेकिन वालिद मोहतरम फरमाते जब उन्होंने जिक्र शुरू किया आहिस्ता आवाज में, फिर तेज हुई, फिर तेज हुई, इतनी तेज हुई कि जितने लोग थे जो रेडियो सुन रहा था उसने वो बंद कर दिया, जो बातें कर रहा था वो खामोश हो गया, सब उन्हीं की तरफ देख रहे, और वो आंखें बंद, बस वो इल्लल्ला इल्लल्ला अपनी कैफियत में आवाज बुलंद से बुलंद होती चली जा रही। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि मैंने दिली दिल में मैंने भी शुरू कर दिया इल्लल्ला इल्लल्ला। तो जैसे ही मैंने शुरू किया उन्होंने फौरन आंख खोल के देखा, पूरी डिब्बे पे नजर दौड़ाई, तार से तार मिल गया ना कि हम जो कर रहे हैं ये दूसरा कौन कर रहा है, पता चल गया ना। तो जैसे ही देखा वालिद साहब को तो कहते दौड़ कर आए और आकर सीट पे नहीं बैठे, कदमों में बैठ गए और फिर जिक्र शुरू कर दिया। वो तो जानते हैं ना कि ये कौन है, तो जानते हैं ना वली रा वली मिशनासन, वली वली को पहचान जाता। तो कहते मैं आहिस्ता जिक्र करता रहा, वो बुलंद आवाज से करते रहे काफी देर इसी तरह। अब एक साहब थे उनको पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उनके कान में जाकर कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही कान में कहा एकदम वो खामोश हो गए और उनके अंदर एक जलाल पैदा हुआ और आंखें सुर्ख हो गईं और घूर कर उनको देखा जिन्होंने कान में ये कह दिया। अब उन्होंने क्या किया, उनके लिपट गए, उन्होंने उनको हटाया और चलती ट्रेन से उतर गए। अब आप ये देखें जब ट्रेन चल रही हो कितनी रफ्तार से चलती, कोई आदमी उतर सकता है, और ऐसे उतरे कि जैसे ट्रेन रुकी हुई है। कहते हैं हमने जब देखा तो सामने चलते हुए जा रहे थे, एक पैर सीढ़ी पर रखा दूसरा जमीन पर रखा, चलते हुए चले। फिर वाले साहब ने उन साहब को डांटा कि तुमने ये क्या हरकत की। कह रहे मैंने कहा बहुत देर हो गई, जिक्र कर रहे हैं थक गए होंगे, इसलिए मैंने इनके कान में कहा हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो एक अपनी कैफियत में था, एक आग लगी हुई थी, और सरकार का नाम तो ठंडक है, जिक्र को रोकने के लिए तो नाम लिया जाता है कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा पानी पड़ गया, ठंडक ही ठंडक हो गई। हुजूर के नाम में तो ठंडक है, रब के नाम में जलाल है। वो एक कैफियत में था, एक जलाल की कैफियत थी, एक अजीब उस पर कैफियत तारी हो रही थी। तुमने कान में जाकर बगैर सोचे समझे जाकर जिक्र रोक दिया, उसकी वो लज्जत वो कैफियत वो तमाम चीजें खत्म हो गई, इसीलिए वो फौरन उतर के चला गया। तो इसलिए इनका मकाम जो है ना बहुत बुलंद है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इनकी अजमत और इनकी शान से इनकार नहीं किया जा सकता। ये लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन जिस तरह सालिक जिन्होंने राह सलूक तय की और इस मंजिल से गुजर गए, वो जिस तरह फायदा पहुंचाते हैं, जैसे आप देखते हैं बुजुर्ग कारण जी इनकी महफिल में गौस पाक से लेकर और आज तक लोग जाते हैं, उनकी दस्तबोसी करते हैं, बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, वो उनके लिए दुआ करते हैं। ये सारी चीजें बुजुर्गाने दीन और ये कामिलीन जितना फायदा पहुंचाते हैं, इस तरह मजजूब की बारगाह में नहीं बैठा जा सकता, इसलिए कि उसकी कैफियत आम लोग समझ ही नहीं सकते। वो हमेशा जज्ब की कैफियत में, तो जब उसकी कैफियत ही नहीं समझ सकते तो आप उससे फैज कैसे हासिल करें। और वो भी एक अपनी कैफियत में है, अगर वो अपनी कैफियत में आ गया, जो उसकी जबान से निकल गया वो हो गया। तो वो हर वक्त हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का नुजूल हो रहा है, वो उसी जलवे में गुम है। अब इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि आप कोई मंजर आप ऐसा देख रहे हो जिससे आप नजर हटाना ना चाहें, और कोई आकर आंखों पर हाथ रख दे तो गुस्सा आएगा ना। मसलन आप मैच देख रहे हैं, इसकी मिसाल मैं दे दूं, मैच के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं। अब वहां पता चला कि अभी छक्का लगने वाला है, किसी ने आंखों पर हाथ रख दिया, आपको हटाओ यार हटाओ जल्दी, मैं देखूं कि हुआ क्या। होता है ना कोई ऐसा मंजर जिसमें आदमी खो गया और वो उसको देख रहा है तो उससे नजर हटाना नहीं चाहता। तो ये तो दुनियावी चीज है, वो हकीकी चीज है। जब वो मंजर इंसान देखता है, तजल्लियात रब्बानी का नुजूल होता है, या जो जो पोशीदा मनाजिर मजजूब देखता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो मनाजिर जो मुशाहिदात उसे कराए जाते हैं, उस मुशाहिदे से नजर हटाना नहीं चाहता, इसलिए आंखें बंद रखता। वो दुनिया वालों को देखने ही नहीं चाहता, वो दुनिया से ला ताल्लुक है, दुनिया में है लेकिन दुनिया से ला ताल्लुक, दुनिया से ला ताल्लुक। जबकि सालिक की कैफियत अलग है। हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। एक जुमला है, तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। और दुनिया को दिल में नहीं रखो, जेब में रखो। जेब में जो चीज होती है निकाली जा सकती है, दिल में अगर घुस जाए तो निकालना मुश्किल है। तो ये सारे बुजुर्गाने दीन दुनिया को जेब में रखते हैं, और जेब में क्या, इनके तो कदमों में दुनिया रहती है। ये दुनिया को छोड़कर आगे जाते हैं, लोग इनके पीछे पीछे जाते। मखदूम समनानी ने दुनिया को छोड़ा, तख्त और ताज को लात मारी, तारिकुल दुनिया कहलाए, तारिकुल सल्तनत कहलाए, दुनिया उनके पीछे पीछे कदमों में। सल्तनत को छोड़ा अल्लाह ने, बातनी सल्तनत अता फरमा दी, ऐसी सल्तनत 700 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, आज भी उनका नाम जिंदा। तो ये इन बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन की शान है, इनके ये तबकात हैं, इनके ये मरातिब हैं, इनके ये मनासिब हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो आज की इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि हमने आपको ये बताया कि मजजूब एक जमात है जो इन बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनके अहवाल व अफ़ाल दीगर बुजुर्गाने दीन से मुख्तलिफ। जिस तरह के वो नशिस्त व बर्खास्त करते हैं, वो शरीयत के मुकल्लब भी होते हैं, वो नमाज भी पढ़ाते हैं, वो शादी भी करते हैं, उनकी औलाद भी होती है, दुनिया में भी रहते हैं, दुनिया वालों से ताल्लुक भी रखते हैं, लेकिन वासिल बाहक होते हैं, अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू रहते हैं, और वहाँ से जो कुछ पैगामात, जो कुछ रूहानियत मिलती है वो आगे पहुँचा देते हैं। बुजुर्गाने दीन की तरफ से बारगाह रिसालत से जो कुछ फैज़ मिलता है वो आगे पहुँचा देते हैं। जबकि मजजूब की कैफियत बिल्कुल अलग है, वो हमेशा जज्ब की कैफियत में है, मधुशी की कैफियत में है, उसको दुनिया से कोई गरज नहीं है, उसको अपनी जात का भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। वो अगर खाना कई दिन तक भी ना खाए तो वो जिंदा है, उसको पता ही नहीं। कपड़े ना पहने तो उसको पता नहीं, सख्त सर्दी में वो बगैर लिबास के है, सख्त गर्मी में वो कंबल ओढ़ के फिर रहा। तो ये उनकी कैफियत बिल्कुल अलग है, लेकिन बहरहाल इनकी अजमत और इनकी शान से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम चीज़ें समझने की हैं। इंशाल्लाह आगे चल के दीकर जो इस जमात के साथ बुजुर्गाने दीन के साथ और सलासिल तरीकत में जो मरातिब और मनासिब हैं, मसलन अब्दाल हैं, औताद हैं, अक्ताब हैं, अगवास हैं, उनके मुतालिक भी इंशाल्लाह हम अलहदा अलहदा नशिस्तों में बयान करेंगे। आइए दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बार कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نادل فرما، ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.